नमस्कार, ओम शांति। शिक्षक दिवस पर आप सभी को और भारत के और विश्व के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। दोस्तों, एक शिक्षक एक गुरु द्वार है प्रकाश का, वो द्वार है विकास का। आप अपने शिक्षक में श्रद्धा का एक बीज बोते हैं और सफलता का फल पाते हैं, एक काबिलियत का अपने शिक्षक से बल पाते हैं। शिक्षक आपको आपके एक नए रूप से परिचित करवाता है, इसलिए आज टीचर्स डे पर हम हर एक का दिल कहता है अपने शिक्षक के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और एक अच्छे टीचर के साथ आपको बाहर भी प्रकाश नजर आता है और आपके अंतर में भी प्रकाश भरता है। और टीचर का ज्ञान वो मंत्र है जो आपके जीवन को तराश कर बड़ा काबिल बना देता है। आइए इस एपिसोड में बढ़ते हैं और हमारे भी स्टूडियो में है बहुत ही काबिल शिक्षक, बहुत ही वैल्यूज को लिए हुए शिक्षक, बहुत ही माहिर शिक्षक। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूं। हमारे बीच हैं भ्राता प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी, जो कि मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग के फैकल्टी हैं आईटीएम मुंबई। और हम हृदय से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर आरपी गुप्ता जी का। आपको 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। आप एसडी कॉलेज पानीपत के प्रिंसिपल भी रहे हैं। आपको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड और भारत ज्योति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपका हृदय से स्वागत है। और हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर शशि बालाजी। आप SLM ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज, जो कि आबू रोड तलहटी में है, आप उसकी प्रिंसिपल हैं और बड़ा जीवन का लंबा अरसा आपने एक शिक्षिका के रूप में बिताया है। आप सभी महान शिक्षकों का आज इस एपिसोड में, इस शो में दिल से स्वागत है। तो शिक्षक दिवस है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भ्राता स्वामीनाथन जी, कि एक शिक्षक के रूप में आपका व्यक्तित्व कैसे आपने तराशा और आप एक काबिल शिक्षक कैसे बने?
एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है। बेसिकली मुझे लगता था हमेशा कि अगर मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है तो मुझे पूरा अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप होना चाहिए
जी।
लेकिन जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से मैं जुड़ा तो मैंने महसूस किया कि बच्चों को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये भी हमें सिखाना चाहिए
जी।
तो पहले तो मुझे अपने जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब मैं अपने स्टूडेंट्स क्लासरूम में जाता था और मेरे स्टूडेंट्स लेट आते थे, क्योंकि मुझे लगता था पंचुअलिटी डिसिप्लिन जितना शिक्षक में जरूरत है उतना बच्चों में भी बहुत जरूरत है
जी।
लेकिन जब मैं इस विद्यालय के साथ जुड़ा तो मैंने महसूस किया कि एक गलती को अब दूसरे गलती से अब ठीक नहीं कर सकते, राइट। लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। तो मैं अपने आप को इतना सशक्त किया कि अभी भी बच्चे लेट आते हैं, लेकिन जो मैं बहुत गुस्से से उनको बोलता था कि आप इतना लेट क्यों आते हो, अभी मैंने अपने में परिवर्तन लेकर बहुत प्यार से मैं उनको कहता हूं। तो इस हिसाब से मैं टीचर के साथ साथ मैं ये फील कर रहा हूं कि आई हैव ट्राइड टू बिकम अ गुड फ्रेंड एंड ऑल्सो अ काउंसलर। तो जो क्योंकि जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो सारे बच्चे पुस्तक में या गूगल में देख भी लेते, लेकिन जीवन कैसे जीना है मुझे लगता है ये भी हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बहुत इजीली आप कर भी सकते हैं जब आप उस बात को महसूस करते हैं।
तो मुझे लगता है जब आप क्लास में प्रवेश करते होंगे तो बच्चे डरते नहीं होंगे, बल्कि आपको देख के खुश होते होंगे।
एग्जैक्टली
और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इनकी बात की, बड़ा प्यार से बच्चों को समझाइए, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। अगर आप गर्म पानी किसी चीज में डालने की कोशिश करो तो वो उसका हालत क्या होगी, आप शीतल जल को, एक नॉर्मल जल को ही किसी में डाल सकते। वैसे भी मैंने सुना है कि अगर आप किसी को प्यार से कहते हैं तो आप सामने वाले का जो रिसेप्टिव जो उसके सेंसर्स है वो ओपन हो जाते हैं।
Exactly.
तो वो अंदर जाता है। अगर आप किसी को गुस्से से या क्रोध से किसी को कुछ कहा जाए तो रिसेप्टिव जो है वो जो उसके सेंसर्स है वो बंद हो जाते हैं, वो उस चीज को पहले ही रोकने के लिए वो एक ढाल का काम करता है। तो पहली बात मुझे जो ये अच्छी लगी, एक शिक्षक को बहुत ही प्यार भरा होना चाहिए, उसे शीतल होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी चीज को दूसरे में डाल सकता है। अगुप्ता साहब, आपने बड़ा अरसा इस प्रोफेशन में बिताया है, बहुत बड़ा अनुभव है आपका एक शिक्षक के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है?
सबसे पहले तो आज इस टीचर्स डे पे मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और जब 5 सितंबर आता है तो हमें सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, जो आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे
जी,
उनका स्मरण हो जाता है। जब वो राष्ट्रपति बने और उनके प्रशंसकों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन एक राष्ट्रपति के रूप में मनाना चाहते हैं, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा नहीं, मैं अपना जीवन, अपना बर्थडे एक शिक्षक के रूप में मनाना चाहता हूं। और वो 5 सितंबर 1962 उस दिन से ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि आपने बहुत अरसा अपनी इस टीचिंग में गुजारा है, तो कोई अनुभव शेयर करिए। एक बहुत सुखद मुझे अनुभव जो है और अब तक मुझे याद है, जब आज से 18 साल पहले मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और अपने प्रिंसिपल को यहां लेकर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे दादी से मिलना है, प्रकाशमणि दादी से। मैंने मिलाया
जी,
मेडिटेशन रूम में ले जाता था उनको, ज्ञान सरोवर में था। दादी ने कहा कि आपको क्या अच्छा लगा? उसने कहा कि मुझे योग सबसे अच्छा लगा। तो इस योग को आप अपने तक सीमित रखेंगे, दूसरे अपने स्टाफ को, बच्चों को नहीं करवाएंगे? कहले हां करवाऊंगा। जब कॉलेज गए तो मैंने उस प्रिंसिपल को कहा कि आपने भगवान के घर में एक प्रतिज्ञा की थी कि हम ये योग दूसरों को भी सिखवाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका भी जीवन अच्छा बने, इसके लिए क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं ऐसे मेडिटेशन रूम बनाऊंगा जैसे हमने ज्ञान सरोवर में देखा है। और कमाल हो गया, शाम इवनिंग में उसने मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई और उसके बाद मंडे को उसका उद्घाटन हुआ
जी।
तो हमने यहाँ कॉन्टेक्ट किया मृत्युंजय भाई को, शीलू बहन गई, मृत्युंजय भाई गए, 2-3 विदेशी भी गए, तो पूरे 2500 हमारे स्टूडेंट्स थे, सबके सामने उस बाबा रूम का अनुभव किया। तो मुझे वो अनुभव आज तक याद है। और एक और अनुभव है, वो बाद में एक और हम शेयर करेंगे। तो वो दिन मुझे याद है कि जब बच्चे मेडिटेशन में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे और लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उस समय हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था बड़ा इंटरेस्टिंग, और वहां मीडिया आया हुआ था, मीडिया ने देखा, उसमें लिखा मेडिटेशन रूम, शायद उन्होंने पहली बार देखा होगा आज से 20 साल पहले।
मतलब किसी स्कूल के अंदर मेडिटेशन रूम,
कॉलेज
में भी, कॉलेज में, कॉलेज में मेडिटेशन रूम होना भी बहुत बड़ी बात है।
तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं
जी?
तो कहना क्या है कि डॉक्टर आरपी गुप्ता क्लास ले रहे हैं, वो आएंगे तो उनसे पूछना। उन्होंने मुझे बुलाया, कहले ये क्या कर रहे हैं बच्चे? मैं कहा ये तो मेडिटेशन कर रहे हैं। कहले इससे क्या फायदा है? मैं कहा जी ये तो वही बता सकते हैं जो कर रहे हैं, बैल बजी और बाहर निकले। तो मीडिया तो उनके ऊपर छा गया, क्या मेडिटेशन करें आपको लाभ होता है? कहले जी हाँ। तो उस समय मुझे उस दिन की बात याद है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ी है
जी।
पहले हम एक पेज में आधा घंटा लगाते थे, अब हमें 15 मिनट लगते हैं। दूसरा, हमारी मेमोरी पावर, याददाश्त बढ़ गई है। और तीसरा जो उन्होंने कहा, उसको मीडिया वालों को उन्हें चकित कर दिया, तीसरा का हमारी वेस्टेज कम हो गई। तो मीडिया वालों ने कहा भाई दो बात तो समझ में आ गई, क्योंकि मेडिटेशन करते हैं आपकी कंसंट्रेशन बड़ी होगी, आपकी याददाश्त भी बड़ी होगी, लेकिन आपकी वेस्टेज कम होगी, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले जब खाली पीरियड होते थे तो हम बरामदे में घूमते थे, गाली गलौज करते थे, कैंटीन में अनसंट खाते थे। जब से मेडिटेशन रूम खुला है तो जब खाली पीरियड होता है तो हम इसमें बैठते हैं, चाहे मेडिटेशन करें या अपना लेसन भी याद करें, तो हमारी वेस्टेज कम होगी, पैसों की वेस्टेज कम होगी। और हमारे पेरेंट्स भी हमारे से बहुत खुश हैं। जब उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो मुझे उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हुई।
बहुत अच्छा लगा ये कि एक मेडिटेशन रूम जो है किसी कॉलेज के अंदर या किसी शिक्षालय के परिसर में कितना बड़ा काम कर सकता है। इसके महत्व को अगर समझा जाए तो आज ये सुन के बहुत सारे स्कूल ऐसे और भी होंगे जो इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन बड़ी बात मुझे दादी जी की जो इन्होंने बात कही, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारी वो यहाँ की प्रधान शिक्षिका रही हैं, वो योग की और इसी ईश्वरीय ज्ञान की, कि वो मोटिवेट करता है। एक शिक्षक जो है वो कहता है जो है उसे बांटो, जो अच्छा अनुभव हुआ है अपने पास रखोगे या दोगे। और हर एक के पास, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम दूसरे को दे सकते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर शशि बालाजी आपसे जानना चाहूंगा, आपका भी बहुत लंबा अरसा रहा है शिक्षा के जगत में और एज अ प्रिंसिपल भी, आप किस रूप में एक शिक्षक को देखती हैं और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं और आप क्या सोचती हैं क्या समाधान हो सकते हैं उनके?
जो हमारी जो क्वालिटी है जो होनी चाहिए इन द नर्सिंग कहें, बिकॉज इट्स अ नर्सिंग कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है एंड क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। और क्वांटिटी के साथ साथ क्या है, जो वैल्यूज जो एकेडमिक्स में जो बच्चे कर रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम कहेंगे उनको एक अच्छे प्रोफेशनल होने के लिए, एक अच्छी नर्स बनने के लिए, जो उनमें ह्यूमैनिटी, जो उनमें कंपैशन, जो उनमें लव, पेशेंट के साथ कैसे नम्रता से व्यवहार करना, लेकिन वो चीजें जो हैं वो कहीं कहीं खत्म होती जा रही हैं।
तो कैसे सीखेंगे बच्चे?
तो उसके लिए ही मुझे लगता है, मैं जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूं और आई थिंक इट्स बीन लास्ट 20 ईयर्स, मैं जब फर्स्ट टाइम यहां आई थी दैट वॉज 2000, तो जब यहां आने के बाद मुझे खुद को भी लगा कि असली जीना तो हम यहीं आके सीखते हैं, जीवन जीने की कला
जी।
तो मैंने वही सोचा कि उसको हमें आज की जनरेशन में बच्चों में और साथ साथ इवन टीचर्स जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी हमें साथ साथ उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही हम क्या, मतलब मैं जो वहां पे थी क्या करती थी कि जैसे ही बच्चे हमारी एडमिशन्स होती थी, हमारा जो 7 डेज का कोर्स है, इफ नॉट ओनली 7 डेज, जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ फिलोसफी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज कि हम आत्मा हैं, परमात्मा हैं, ये थोड़ी नॉलेज हम बच्चों को जरूर देते हैं और उसके साथ साथ ही कुछ वैल्यू एजुकेशन के बारे में भी हम बच्चों को बताना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम करते हैं वैल्यूज इन हेल्थ स्पिरिचुअल अप्रोच, हम उसके बहुत क्लासेस बच्चों के लिए लेते हैं, उसके प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं
बच्चों के लिए, जो कॉलेज के बच्चे हैं और टीचर्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम अक्सर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं,
अक्सर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हम एंड वेरी फ्रीक्वेंटली। बच्चों के लिए तो हम देखते हैं कि एवरी इन 4 ईयर्स में जो हम ये वैल्यूज का जो प्रोग्राम है, ये हम चाहते हैं इसके जो 7 मॉड्यूल्स हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए बिफोर दे कंप्लीट देयर कोर्स
जी
ये पूरे मॉड्यूल्स जो हैं हम उनको करवाए हैं इधर,
बच्चे और क्रिएटिव हों,
क्रिएटिव
और
होते हैं एंड वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं इन चीजों को
जी।
एंड डेफिनेटली जब वो 4 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं, अभी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो बच्चे आते हैं उसमें और जब वो जाते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन देयर बिहेवियर।
और एक जो शिक्षालय है किसी भी चीज का, उसका अर्थ ही ये है कि आपके पास कोई कच्चा मटेरियल आया और पक्के वो तैयार होके पूरा राइप होके निकला है, जो उसका एक रूप होना चाहिए। प्रोफेसर स्वामीनाथन जी, आपको क्या लगता है कि जो अब का शिक्षक का एक वक्त है, वो पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है या आसान हो गया है? क्योंकि जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जो हमने एडवांसमेंट की उसके मुताबिक तो जो पहले टाइम में जो शिक्षा रही होगी, एक शिक्षक रहा होगा, उससे अब आसान है या मुश्किल है वक्त?
इसका सीधा सीधा जवाब है कि आज के समय पर एक्चुअली आसान होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कठिन हो गया है
जी।
और अगर ये कठिन हुआ है तो उसके पीछे कुछ कारण भी है। ये मुझे कैसे समझ में आया कि एक बार मैं किसी स्कूल के प्रोग्राम में गया था, तो बच्चे जो थे ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आ रहे थे। अच्छा, जब वो स्कूल में आ रहे थे तो उनकी जो मम्मा जो थी उनको बहुत धक्का मार के स्कूल भेज रही थी
जी।
एंड बच्चों को बिल्कुल वो स्कूल में आने का मन ही नहीं था। अच्छा, फिर मैंने देखा टीचर्स को आते हुए भी, तो वो भी एकदम बहुत सीरियस थे। अच्छा, जब स्कूल की घंटी बजी तो मैंने देखा सारे बच्चे ऐसे भागे स्कूल से जैसे वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए
जी।
अच्छा, तो मुझे लगा शायद टीचर्स बहुत खुश होंगे, लेकिन टीचर्स जाते वक्त भी उतने ही सीरियस थे, निकलते वक्त भी उतने ही सीरियस थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले के जमाने में, उस समय बच्चे जब विद्यालय में जाते तो भी बहुत खुशी से जाते थे, क्योंकि शायद उनमें इतना प्रेशर नहीं था। टीचर्स भी बहुत आनंद के साथ, आउट ऑफ चॉइस है ना, वो लगता था कि टीचिंग प्रोफेशन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो कहते थे, तो मतलब इतना उनका सौभाग्य था कि मैं शिक्षक हूं। और पुराने जमाने में तो शायद पूरे गांव में सबसे ज्यादा जो सम्माननीय होता था वो शिक्षक होता था। कहीं ना कहीं समय के आधार पर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो तो आज जो हम लोग जो फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पर, सफलता के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस बच्चे से ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, हर स्कूल हर कॉलेज एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है, और इसलिए उस सफलता के आधार पर जो आंतरिक खुशी हम खो गए हैं
जी, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है
और उसमें जो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो चुनौतियां बढ़ गई है पहले के हिसाब से, अभी हम फिर से इसको ठीक कर सकते हैं अगर हर टीचर महसूस करे कि मेरा ये सौभाग्य है ये प्रोफेशन, और बहुत खुशी से अगर करे, हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम सक्सेसफुल, वी शुड गिव अ गोल इन दर लाइफ, बच्चों में ये लक्ष्य दे कि बच्चों को खुश रहना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं जिससे मैं खुशी प्राप्त करूं,
मैं भी खुश हूं और बच्चों को भी खुश रहना सिखाएं, क्योंकि बड़ा लंबा जीवन उनके आगे सामने है और बहुत सारी चीजों से गुजरना है, और वैसे कहते हैं जो अपने में होता है वो दूसरे में जाता है,
करेक्ट,
यदि एक शिक्षक खुश रहना सीख लेता है,
करेक्ट,
बच्चों को भी वो सिखा सकता है, और मुझे याद है बचपन में हम उन टीचर्स को सबसे ज्यादा याद करते हैं आज,
करेक्ट,
जो बहुत खुशी से हमको सिखाते थे, जो प्रेरणा देते थे, शाबाश कहते थे, आगे बढ़ाते थे, सचमुच आज वो टीचर्स बड़े याद आते हैं,
करेक्ट।
गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है कि एक टीचर जो है आज की मुश्किलों में कैसे अपने आप को एक काबिल टीचर सिद्ध कर सकता है?
टीचर्स में ये तीन क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो तीन क्वालिटी है तो एक रोल मॉडल बन सकता है, और मैंने अपने 33 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में माना है कि एक बच्चा माँ बाप की बात को टाल सकता है, एक बच्चा अपने दोस्त की बात को टाल सकता है, एक बच्चा अपने समाज की बात को टाल सकता है, लेकिन अगर वो टीचर ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, तो बच्चा उसकी बात को कभी नहीं टाल सकता
जी।
तो हमारे अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए, एक डेडिकेशन, एक डिवोशन, एक डिटर्मिनेशन, लेकिन आज के युग में तीनों चीजें खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि भौतिकता का जमाना आ गया, डेडिकेशन खत्म हो गई, सिर्फ चार पीरियड पढ़ाने भाग जाना है, डिवोशन भी है काम के प्रति और वो डिटर्मिनेशन भी नहीं है, क्योंकि पहले एक टीचर समाज के लिए ज्यादा जीता था, अपने लिए कम जीता था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल रिवर्स हो गई है
जी।
अपने लिए ज्यादा जीता है, समाज के लिए कम जीता है।
आपको क्या लगता है तीनों चीजें सिखाने के लिए एक पीरियड टीचर्स के लिए भी रखना चाहिए?
हाँ,
पीरियड पढ़ाया जाए उनको,
उसके लिए पीरियड उसके लिए बहुत जरूरी है। हम टीचर्स के लिए वर्कशॉप करते हैं, टीचर्स को यहाँ कई बार बुलाया है, नासिक से भी दो तीन ग्रुप आए हैं।
मैं एक प्रश्न बहन शशि बालाजी से जरूर पूछना चाहूंगा कि अक्सर जो है कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में डाल देते हैं और वो सोचते हैं कि अब जो करना है वो टीचर्स को ही करना है, उनका ही पार्ट है, और उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। ये कहां तक सही है? क्या बच्चे का जीवन अच्छा बनाने के लिए खाली एक शिक्षक जो है उसका ही उत्तरदायित्व है, जहां जो माता पिता जो पहले शिक्षक हैं बच्चे के उनका भी कुछ रोल रहता है?
बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन पूछा। मैं जब से यहां आई हूं, यहां ग्लोबल में, ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज में, अक्सर मैंने देखा है एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स आते हैं, आते ही उनका ये होता है कि जी हमने इस कॉलेज को चुना है, यहां से वो एक अच्छा इंसान बन के जाए, यहां की वैल्यूज लेकर के जाए। तो मैं अक्सर उनसे यही बात मतलब उनके साथ शेयर करती हूं और बताती हूं, मैंने कहा देखिए हम भी उनके साथ बच्चों को जो दे सकते हैं प्रोफेशनली भी दे सकते हैं, एकेडमिक भी देंगे एंड एवरीथिंग, लेकिन इसके साथ उनका भी पूरा सहयोग चाहिए, उनको डिसिप्लिन देने में, उनको वो वैल्यूज देने में, जो बच्चों में सक्सेसफुल होने के लिए वैल्यूज, एकेडमिक नॉलेज के साथ जो वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज होंगी एकेडमिक नॉलेज के साथ तभी वो आज इंसान कोई भी सक्सेसफुल है।
तो मतलब माता पिता के जो प्रभाव है वो उस पर बहुत गहरा रहेगा कि घर में भी वो कैसे रह रहे हैं।
या और माँ बाप क्या करते हैं, आएंगे नहीं जी आज से आपका बच्चा है, बट हमारा बच्चा है लेकिन उसके साथ बच्चा एब्सेंटिज्म इंक्रीज हो रही है, आप देखिए है ना, तो अब एब्सेंटिज्म है, बच्चा घर जा रहा है, दो दिन की छुट्टी हुई है एंड 10 डेज बच्चा वापिस नहीं आता है। तो यहाँ माँ बाप का सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना एक टीचर के लिए, हमने दो दिन की छुट्टी दी है तो उसको दो दिन के बाद ही उनको वापिस भेजना चाहिए, वहां वो फेल हो जाते हैं। ये ऐसे बहुत मुश्किलें आती हैं आजकल और जो आ ही रही हैं अभी भी।
और कल बच्चे अगर सक्सेस नहीं पाता तो टीचर्स के ऊपर भी आता है इल्जाम, जी शायद आपने कुछ कमी छोड़ दी। करे, लेकिन कमी दोनों तरफ से रहती है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके उस पर पूरा ध्यान दें तो एक बच्चा बहुत अच्छी तरह से खेल सकता है, उसका विकास बहुत अच्छा हो सकता है।
दोनों तीन चीजें हैं, तीसरी भी है, सोसाइटी भी उसके लिए जिम्मेवार है।
बिल्कुल, सोसाइटी का हर शख्स जिम्मेवार है। स्वामी भाई, क्या लगता है आपको इस विषय पे, आप क्या कहना चाहेंगे?
शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज का अगर हम परिवेश देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और कहीं ना कहीं हम टीचर्स बहुत ज्यादा कंपैरिजन पे भी आ जाते हैं। हमको भी क्लास में वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे समय पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन और कंपटीशन के ये तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक यू नो कोऑपरेटिव एटीट्यूड लेकर आना जरूरत है,
क्योंकि कुछ बच्चे बड़े कमजोर होंगे, साधारण होंगे,
करेक्ट,
उनकी मानसिकता अलग है, उनको अलग तरह से मार्गदर्शन चाहिए होगा, उनको सहयोग अलग तरह से चाहिए होगा।
तो कोऑपरेशन जब मैं कह रहा हूं तो कोऑपरेशन में वो बच्चे, बच्चे के माता पिता, उनकी सोसाइटी, और मैंने ये महसूस किया है कि हर बच्चे की अपनी एक विशेषता है, हर बच्चे को कुछ एक बातें बहुत बहुत अच्छी लगती है
जी।
तो अगर हमने उस बच्चे की विशेषता को देखा, राइट, उनके जो गुणों को देखा, मे बी वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनकर आया है लेकिन मे बी हिज पैशन इज समथिंग एल्स
जी,
तो अगर हमने उस बात को महसूस किया तो मेरे ख्याल से हम उनको एक बहुत सही दिशा दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आज जो हम स्टूडेंट्स में, चाहे वो सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम जो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने जो देखा और वो है रिलेशनशिप में
जी,
वर्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, और जिसके कारण हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा मन डिस्ट्रैक्ट और डिविएट होता है। हमारे प्राचीन काल में ये बताया जाता था कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मन एकदम शांत, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मीडिया को लेकर ये सब नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा वायरस बच्चों के मन में आ रहा है। ऐसे समय पर जब शिक्षक क्लासरूम में जाता है तो उनकी ये बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक अच्छे दोस्त बनकर वो बच्चों को एक सही दिशा दिखाए, राइट? और जो इतना सारा जो डिजिटल और ये मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उनमें हम एक सही दिशा दिखाएं, बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें ही वो कितनी रचनात्मक कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आजकल बच्चों के पास बहुत ज्यादा चॉइस होता है, तो चॉइस के साथ उनकी जो इमोशंस है, जो उनके फीलिंग्स है, इनफैक्ट मैं कभी कभी ये भी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि वो दो साल का अगर इंजीनियरिंग कर ही रहा है तो वो एनीवे यू हैज टू कंप्लीट इट, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन फील्ड हैं। आफ्टर इंजीनियरिंग कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां पर वो अपने मन की इच्छा की तरफ जा सकते हैं। तो चॉइसेस बढ़ रहे हैं तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर शिक्षक एक बहुत सुंदर, एक न्यूट्रल एक काम कर सकता है जहां सभी को लेकर हुए, बट उसमें एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज आता है कि 60 बच्चे होते हैं तो शिक्षकों के पास इतना समय होता है क्या? अगर हम 2 मिनट हर बच्चे को थोड़ा शांत अगर मन को लेकर आ सकते हैं, और जैसे ही वो मन को शांत करते हैं तो बच्चों को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद मिलता है। तो मास्टर चाबी तो यही है
जी,
कि अगर हम बच्चों के मन को अगर हम शांत कर सकते हैं, शीतल कर सकते हैं, तो उनको अपनी चैलेंजेस का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल सकता है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर स्वामीनाथन जी, डॉक्टर आरपी गुप्ता जी, बहन शशि बाला जी, आज बहुत ही प्यारी चर्चा हुई, और पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं वो एक अच्छे इंसान के रूप में भी उभरेंगे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी उभरेंगे, क्योंकि हम हर किसी को एक सिखा ही रहे हैं। हमारे सामने कोई ना कोई बच्चा, कोई व्यक्ति है ही है जो हमसे कुछ ना कुछ सीख रहा है, और हम काबिल बने ऐसी और जिंदगी जिए जो और खुशनुमा हो, और बेहतरीन हो, ऐसी शिक्षक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस टीचर्स डे पर हमने भरपूर आनंद लिया, गहरे विचारों को जाना जिसमें विद्यार्थी भी जुड़े थे और शिक्षक भी जुड़े थे। और दोस्तों, शिक्षक जो है आपके जीवन को संवारने के लिए है, निखारने के लिए है, आप उसमें श्रद्धा का, विश्वास का आप बीज बोइए, उनमें आशा रखिए, आपको यही शक्ति जो है जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। और हम सभी शिक्षक के रूप में इस दुनिया के सामने हैं, हर कोई हमसे कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो अपने आप को ऐसा बनाएं जो समाज हमसे कुछ अच्छा ले सके, और ये पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इस दुनिया का हर शिक्षक एक बेहतरीन शिक्षक बने और हर विद्यार्थी एक सुंदर अच्छा विद्यार्थी बने, और हम जल्दी ही एक शिक्षक और विद्यार्थी के सुंदर नाते से बेहतरीन समाज को देख सकें, एक सुंदर विश्व को देख सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टीचर्स डे की, आपको बहुत बहुत बधाइयां। ओम शांति, नमस्कार।